विलाप गीत अध्याय पांच। पांचवा विलाप गीत, पद एक से लेकर चार तक। हे यहोवा, स्मरण कर कि हम पर क्या क्या बीता है। हमारी ओर दृष्टि करके हमारी नाम दराई को देख। हमारा भाग परदेशियों का हो गया और हमारे घर परायों के हो गए हैं। हम अनाथ और पिताहीन हो गए, हमारी माताएं विधवा सी हो गई है। हम मोल लेकर पानी पीते हैं, वे पानी को खरीद कर पीते थे। विलाप गीत अध्याय पांच पद चार से लेकर दस तक। हमको लकड़ी भी दाम से मिलती है, खदेड़ने वाले हमारे गर्दन पर टूट पड़े हैं। हम थक गए हैं, हमें विश्राम नहीं मिलता। हम स्वयं मिस्र के अधीन हो गए और अशूर के भी, ताकि पेट भर सके। हमारे पुरखाओं ने पाप किया और मर मिटे हैं, परंतु उनके अधर्म के कामों का भार हमको उठाना पड़ा है। हमारे ऊपर दास अधिकार रखते हैं, उनके हाथ से कोई हमें नहीं छुड़ाता। जंगल में की तलवार के कारण हम अपने प्राण जोखिम में डालकर भोजन वस्तु ले आते हैं। भूख की झुलसने वाली आग के कारण हमारा चमड़ा तंदूर नाई काला हो गया है। भोजन न मिलने के कारण उनकी त्वचा काली पड़ गई थी और चमड़े की तरह सूख गई थी। विलाप गीत अध्याय पांच पद ग्यारह। सियोन में स्त्रियों और यहूदा के नगरों में कुमारियां भ्रष्ट हो गई है। शत्रु यरूशलेम में घुस गए थे, पतियों ने अपनी पत्नियों और जवान बेटियों को शत्रुओं के द्वारा अपहरण होते हुए, बलात्कार होते हुए और हत्या होते हुए देखा होगा। ये देखने में बड़ा भयानक दृश्य रहा होगा। विलाप गीत अध्याय पांच पद बारह से लेकर इक्कीस तक। हाकिम हाथ के बल टांगे गए हैं और पुरनियों का कुछ भी आदर नहीं किया गया। जवानों को चक्की चलानी पड़ती है और लड़के बाले लकड़ी का बोझ उठाए हुए लड़खड़ाते हैं। अब फाटक पर पुरनिये नहीं बैठते, न जवानों का गीत सुनाई पड़ता है। हमारे मन का हर्ष जाता रहा, हमारा नाचना विलाप में बदल गया है। हमारे सिर पर का मुकुट गिर पड़ा है। हम पर हाय, क्योंकि हमने पाप किया है, इस कारण हमारा हृदय निर्बल हो गया है। इन्हीं बातों से हमारी आंखें धुंधली पड़ गई है, क्योंकि सियोन पर्वत उजाड़ पड़ा है, उसमें सियार घूमते हैं। परंतु हे यहोवा, तू तो सदा तक विराजमान रहेगा, तेरा राज्य पीढ़ी पीढ़ी बना रहेगा। तूने क्यों हमको सदा के लिए भुला दिया है और क्यों बहुत काल के लिए हमें छोड़ दिया है? हे यहोवा, हमको अपनी ओर फेर, तब हम फिर सुधर जाएंगे। प्राचीन काल की नाई हमारे दिन बदलकर ज्यों के त्यों कर दे। इसमें ही इसी का उत्तर है। परमेश्वर हमारे मनों को अपनी ओर फेर, हमारे पुराने संबंधों को पहले के समान नया कर दे। आपको प्रकाशित वाक्य का वो पद याद होगा जिसमें यीशु ने इफिसियों की कलीसिया को कहा था, तूने अपना पहले से प्रेम छोड़ दिया है, सो स्मरण कर कि तू कहां से गिरा है और मन फिरा और पहले के समान काम कर। यहां वो कह रहा है, परमेश्वर हमें पहले की ओर ले चल, लेकिन पुस्तक का अंत वो उदासी से करता है। विलाप गीत अध्याय पांच पद बाईस में। क्या तूने हमें बिल्कुल त्याग दिया है? क्या तू हमसे अत्यंत क्रोधित है? ऐसी उदासी और दुख से भरा गीत लिखने की कभी आवश्यकता नहीं पड़ती। यदि लोगों ने परमेश्वर की आवाज सुनी होती तो इतिहास में ऐसा अंधकार का समय कभी नहीं आता। परमेश्वर ने कई बार उनको सचेत किया, परमेश्वर ने भविष्यद् वक्ताओं को भेजा, आने वाले खतरे की बार बार चेतावनी दी, परंतु उन्होंने परमेश्वर के वचन व चेतावनियों पर कोई ध्यान नहीं दिया। परंतु परमेश्वर विश्वास योग्य है, जो उसने कहा था उसने पूरा किया। आज भी परमेश्वर इस संसार को उस न्याय की चेतावनी देता है जो आने वाला है। जैसा यरूशलेम के साथ हुआ, इस ईश्वर रहित संसार के साथ भी होगा। एक ऐसा विनाश आने वाला है जिसे संसार ने ना तो पहले कभी देखा था और ना ही आगे कभी देखेगा। प्रभु यीशु मसीह ने आने वाले दिनों के बारे में घोषणा करते हुए यूं कहा, और उस दिन महाक्लेश होगा जैसा संसार ने कभी नहीं देखा और ना फिर कभी देखेगा। हमारा एक ही सुरक्षित स्थान है और वो है यीशु मसीह। यदि आप यीशु मसीह में हैं, तो वो आपको पृथ्वी के ऊपर आने वाले महाक्लेश से बचाएगा। परंतु यदि आप मसीह में नहीं हैं, जैसे कि इब्रानियों की पुस्तक में लिखा है, इब्रानियों अध्याय 10 पद 27 से 31, हां, दंड का एक भयानक बाढ़ जोना और आग का ज्वलन बाकी है जो विरोधियों को भस्म कर देगा। जबकि मूसा की व्यवस्था का ना मानने वाला दो या तीन जनों की गवाही पर बिना दया के मार डाला जाता है, तो सोच लो कि वो कितने और भी भारी दंड के योग्य ठहरेगा जिसने परमेश्वर के पुत्र को पांव से रौंदा और वाचा के लहू को, जिसके द्वारा वो पवित्र ठहराया गया था, अपवित्र जाना है और अनुग्रह की आत्मा का अपमान किया। क्योंकि हम उसे जानते हैं जिसने कहा कि पलटा लेना मेरा काम है, मैं ही बदला दूंगा, और फिर ये कि प्रभु अपने लोगों का न्याय करेगा। जीवते परमेश्वर के हाथों में पड़ना भयानक बात है। परमेश्वर ने प्रतिज्ञा की है कि दुष्ट संसार के ऊपर न्याय आने वाला है। परमेश्वर विश्वास योग्य है, वो अपनी प्रतिज्ञा पूरी करेगा। लेकिन यीशु कहता है, लूका अध्याय 21 पद 36, इसलिए जागते रहो और हर समय प्रार्थना करते रहो कि तुम इन सब आने वाली घटनाओं से बचने और मनुष्य के पुत्र के सामने खड़े होने के योग्य बनो। मैं प्रार्थना कर रहा हूं और विश्वास करता हूं कि परमेश्वर मेरी प्रार्थनाओं का उत्तर देगा, कि जब परमेश्वर का कोप इस संसार पर उंडेला जाएगा, मैं उस महाक्लेश से बच जाऊं, या जब ये सब होगा, मैं आशा करता हूं कि मैं परमेश्वर के सामने खड़ा रहूंगा। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक अध्याय 5 पद 1 से लेकर 10 तक, जो सिंहासन पर बैठा था, मैंने उसके दाहिने हाथ में एक पुस्तक देखी जो भीतर और बाहर लिखी हुई थी, और वो 7 मोहर लगाकर बंद की गई थी। फिर मैंने एक बलवंत स्वर्गदूत को देखा जो ऊंचे शब्द से ये प्रचार करता था कि इस पुस्तक के खोलने और उसकी मोहरे तोड़ने के योग्य कौन है, और ना स्वर्ग में, ना पृथ्वी पर, ना पृथ्वी के नीचे कोई उस पुस्तक को खोलने या उस पर दृष्टि डालने के योग्य निकला। और मैं फूट फूट कर रोने लगा, क्योंकि उस पुस्तक के खोलने या उस पर दृष्टि करने के योग्य कोई ना मिला। तब उन प्राचीनों में से एक ने मुझसे कहा, मत रो, देख, यहूदा के गोत्र का वो सिम जो दाऊद का मूल है, उस पुस्तक को खोलने और उसकी 7 मोहरे तोड़ने के लिए जयवंत हुआ है। और मैंने उस सिंहासन और 4 प्राणियों और उन प्राचीनों के बीच में मानो एक वध किया हुआ मेमना खड़ा देखा। उसके 7 सिंह और 7 आंखें थी। ये परमेश्वर की 7 आत्माएं हैं जो सारी पृथ्वी पर भेजी गई है। उसने आकर उसके दाहिने हाथ से जो सिंहासन पर बैठा था वो पुस्तक ले ली, और जब उसने पुस्तक ले ली तो वे चारों प्राणी और 2400 प्राचीन उस मेमने के सामने गिर पड़े, और हरेक के हाथ में वीणा और धूप से भरे हुए सोने के कटोरे थे। ये तो पवित्र लोगों की प्रार्थनाएं हैं, और वे ये नया गीत गाने लगे, तू इस पुस्तक के लेने और उसकी मोहरे खोलने के योग्य है, क्योंकि तूने वध होकर अपने लहू से हर कुल और भाषा और लोग और जाति में से परमेश्वर के लिए लोगों को मोल लिया है, और उन्हें हमारे परमेश्वर के लिए एक राज्य और याजक बनाया, और वे पृथ्वी पर राज्य करते हैं। मैं वही रहने की लालसा करता हूं, परमेश्वर के सम्मुख खड़े रहकर मेमने की स्तुति के गीत गाऊं, जो मेरे लिए मरा, जिसने इस दुनिया से मुझे बचाया। केवल उद्धार पाए हुए लोग ही वो गीत गा सकते हैं। इस गीत को स्वर्गदूत नहीं गा सकते, क्योंकि वे मसीह के लहू के द्वारा नहीं बचाए गए हैं। ये गीत परमेश्वर के सिंहासन के सम्मुख बचाई गई कलीसिया का है। स्वर्गदूत कलीसिया के साथ मिलकर गा सकते हैं जो कलीसिया गा रही है। स्वर्गदूत अनगिनत पवित्र लोगों के साथ मिलकर इस गीत को गा सकते हैं कि वध किया हुआ मेमना ही सामर्थ और धन और ज्ञान और शक्ति और आदर और महिमा और धन्यवाद के योग्य है। वे मुखड़ा गाते हैं, लेकिन बोल वे नहीं गाते, क्योंकि आपको अंतरे गाने हैं। प्रकाशित वाक्य अध्याय 6 पद 1 से लेकर 2 तक। फिर मैंने देखा कि मेमने ने उन 7 मोहरों में से एक को खोला, और उन चारों प्राणियों में से एक का गर्जन का सा शब्द सुना कि आ, और मैंने दृष्टि की और देखो एक श्वेत घोड़ा है, और उसका सवार धनुष लिए हुए है, और उसे एक मुकुट दिया गया, और वो जय करता हुआ निकला कि और भी जय प्राप्त करे। प्रकाशित वाक्य अध्याय 6 से लेकर 18 तक दुष्टों के प्रति परमेश्वर के न्याय के बारे में लिखा गया है। परमेश्वर मनुष्यों की दुष्टता और पापों के लिए उनका न्याय करेगा। परमेश्वर विश्वास योग्य है। परमेश्वर ऐसा ही करेगा। एक ही सुरक्षित स्थान है, और वो है यीशु मसीह। मैं खुश हूं कि मैं मसीह में हूं। इसके अतिरिक्त कोई और स्थान नहीं है, और ना ही मैं वहां जाना चाहता हूं। मैं चाहूं भी क्यों? मैं मसीह में यहां बहुत खुश हूं। हम प्रार्थना करें। पिता, हम धन्यवाद करते हैं उस गुप्त स्थान के लिए जो तूने सर्वशक्तिमान के सम्मुख हमें यीशु मसीह के साथ रहने के लिए नियुक्त किया है। हे पिता, हम धन्यवाद देते हैं कि तूने हमारी शरण के लिए एक स्थान बनाया है कि यीशु मसीह में हम सुरक्षित रहें। मेरी ये प्रार्थना है कि वे लोग परमेश्वर की विश्वास योग्यता के बारे में सोचे, जिसने अपने वचन के अनुसार यरूशलेम को नष्ट किया, ठीक उसी तरह अपने वचन की पूर्ति के लिए संसार का न्याय करेगा, क्योंकि आप विश्वास योग्य हैं। प्रभु, होने दे कि हम अपने पापों से, मूर्ति पूजा से और अपनी दुष्टता से फिरकर प्रभु संपूर्ण मन से तेरी सेवा करने पाए। यीशु के नाम में आमीन। यदि आपने अभी तक यीशु मसीह को ग्रहण नहीं किया तो इसके बारे में सोचे। हम लोग व्याकुलता से भरे दिनों में जी रहे हैं। जैसे यरमिया ने कहा, ये वो समय है जब हमें अपने चारों तरफ लोगों के लिए, अपने देश के लिए, एक दूसरे के लिए परमेश्वर से प्रार्थना करना नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि ये सच में अंतिम दिन है, और शैतान गरजने वाले सिंह की तरह घूमता है कि किसको फाड़ खाए। वो कलीसियाओं में से बहुतों को भरमाता और नष्ट करता है। उन्हें पाप के जीवन, अहंकार के जीवन और शारीरिक अभिलाषा के जीवन की ओर आकर्षित करता है, जो मृत्यु है। हमें तब तक प्रार्थना से हटना नहीं चाहिए जब तक ये हमें निश्चित ना हो जाए कि परमेश्वर से मेरा संबंध सही है। परमेश्वर आपको आशीष दे, परमेश्वर आपकी रक्षा करें और परमेश्वर आपको समय के बारे में चेतना प्रदान करें, ताकि मसीह यीशु की सेवा के लिए सौंप दे। परमेश्वर आपको बहुतायत से इस्तेमाल करें, ताकि आप इन आवश्यकताग्रस्त लोगों के बीच में प्रभु यीशु मसीह के प्रेम को बांटने में साधन बनें।